वास्तव में यह कुरान वह मार्ग दिखाता है जो सबसे ज्यादा सीधा है, और ईमान वालों को जो अच्छे काम करते हैं शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है।
कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। मैं हूं जहरा जैदी और कार्यक्रम में मेरा साथ दे रहे हैं हसन अब्बास। श्रोताओं, सूरह फुरकान की आयतों की व्याख्या समाप्त हुई और अब हम सूरह शुअरा की आयतों की व्याख्या आरंभ करेंगे। इस सूरह में 227 आयतें हैं और चूंकि इस सूरह की अंतिम आयतों में कवियों और समाज में उनकी भूमिका के बारे में बात की गई है, इसलिए इस सूरह को शुअरा के नाम से याद किया जाता है। शुअरा शायर का बहुवचन है जिसका अर्थ होता है अनेक कवि। तो आइए पहले सूरह शुअरा की पहली से लेकर तीसरी आयत तक की तिलावत सुने।
بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين।
ईश्वर के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है, ता सीन मीम, ये स्पष्ट करने वाली किताब की आयतें हैं। शायद आप इस दुख में कि वे अनेकेश्वरवादी ईमान नहीं लाते अपने प्राण ही खो बैठेंगे।
कुरान मजीद के 29 सूरे हुरूफ मुकत्ता अर्थात खंडित अक्षरों से आरंभ हुए हैं। ये अक्षर इस बिंदु पर बल देते हैं कि कुरान मजीद जो ईश्वर का महान चमत्कार है, इन्हीं सरल से अक्षरों से बना है जो सभी के सामने है, और किसी भी लेखक या विचारक में इतनी क्षमता नहीं है जो इस जैसी किताब लिख सके।
इन आयतों में कुरान मजीद को स्पष्ट करने वाली किताब बताया गया है जो असत्य को सत्य और गलत को सही से अलग कर देती है, और यही इस ईश्वरीय किताब की महानता और चमत्कार का चिन्ह है।
तीसरी आयत लोगों के मार्गदर्शन के लिए पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अथाह प्रेम व लगन की ओर संकेत करती है। उनकी ये लगन इस सीमा तक थी कि अनेकेश्वरवादियों के गलत व अनुचित व्यवहार और उनकी ओर से लगाए जाने वाले आरोपों एवं अपमानों के बावजूद वे एक ईश्वरवाद की ओर अपने निमंत्रण को नहीं छोड़ते थे। पैगंबर इस्लाम ये देखकर कि वे लोग ईमान नहीं लाते और अपने गलत विचारों व आस्थाओं पर हठधर्मी के साथ अड़े हुए हैं, बहुत दुखी होते थे, और ये दुख इतना बढ़ गया था कि वे मरने के निकट पहुँच गए थे।
इन आयतों से हमने सीखा कि तथ्यों को स्पष्ट करके प्रस्तुत करना कुरान मजीद की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से है। जहाँ भी हमें रास्ता न मिले, वहाँ सबसे उचित काम यह है कि कुरान से संपर्क करें ताकि वो हमें मार्ग दिखाए।
पैगंबर लोगों के हितैषी थे। वे अपने दायित्वों के पालन और लोगों को सत्य का निमंत्रण देने में अपेक्षा से अधिक प्रयास किया करते थे।
यदि लोगों में बात स्वीकार करने की भावना नहीं होगी तो बड़ी से बड़ी किताब और अच्छे से अच्छा प्रशिक्षक भी उनके लिए लाभदायक नहीं होगा।
आइए अब सूरह शुअरा की आयत क्रमांक 4 की तिलावत सुने।
यदि हम चाहें तो उन पर आकाश से चमत्कार की एक निशानी उतार दें ताकि उनकी गर्दनें उसके आगे झुकी रह जाएं।
पिछली आयत में कहा गया था कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर संभव प्रयास के बावजूद अनेक ईश्वरवादी ईश्वर पर ईमान लाने के लिए तैयार नहीं होते थे। यह आयत इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि वे ये ना सोचें कि अपने कुफ्र से वे ईश्वर के प्रभुत्व और उसकी शक्ति की परिधि से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि लोग अपनी इच्छा और अपने चयन से ईमान लाएं। यदि वो चाहता तो उन्हें अपनी शक्ति की ऐसी निशानी दिखाता कि सभी भय और विवशता के साथ उसका आज्ञा पालन करते और उसके समक्ष नतमस्तक हो जाते।
इस आयत से हमने सीखा कि ईमान विवशता पूर्वक नहीं बल्कि चयन के साथ होना चाहिए। जब ईश्वर जो मनुष्यों का स्वामी है उन्हें ईमान लाने पर विवश नहीं करता, तो क्या माता पिता सहित अन्य लोगों को इस बात का अधिकार है कि वे अन्य लोगों को ईमान के लिए विवश करें?
जो लोग सत्य के सामने सिर नहीं झुकाते, एक दिन वे भी नतमस्तक हो जाएंगे और ईमान ले आएंगे, किंतु तब तक देर हो चुकी होगी और उस दिन ईमान लाने का कोई लाभ नहीं होगा।
आइए अब सूरह शुअरा की आयत क्रमांक 5 और 6 की तिलावत सुने।
وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
उनके पास दयावान ईश्वर की ओर से आयत के रूप में कोई नया उपदेश नहीं आता, सिवाय इसके कि वे उससे मुंह फेर लेते हैं। तो उन्होंने ईश्वरीय आयतों को झुठला दिया, तो शीघ्र ही उन तक उसकी सूचना पहुंच जाएगी जिसका वे परिहास करते थे।
ये आयतें पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संबंध में मक्के के अनेकेश्वरवादियों के अनुचित व्यवहार का उल्लेख करते हुए कहती हैं कि पैगंबर पर जो भी आयत उतरती थी और अनेकेश्वरवादियों की चेतना के लिए नया उपदेश प्रस्तुत करती थी, तो वे उससे पाठ सीखने और जागरूक होने के बजाय मुँह मोड़ लेते थे। यहाँ तक कि वे ईश्वरीय आयतों को सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते थे, जबकि वे आयतें उस दयावान ईश्वर की ओर से थीं जिसकी दया का पात्र पूरा विश्व है और मनुष्य सहित सभी वस्तुएं उसकी असीम दया व कृपा से लाभान्वित होती हैं।
हर धर्मी और सांप्रदायिक सोच वाले अनेकेश्वरवादी केवल इसी पर बस नहीं करते थे, बल्कि वे किसी भी प्रकार का तर्क प्रस्तुत किए बिना ही ईश्वरीय आयतों को झुठलाते हुए उन्हें गलत बताते थे। इससे भी बढ़कर ये कि सत्य का इनकार करते हुए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके द्वारा दी जाने वाली शुभ सूचनाओं का भी परिहास करते थे।
यदि पैगंबर प्रलय, स्वर्ग व नरक की बात करते थे, तो वे मजाक उड़ाते हुए इसे उनकी कल्पना और वहम बताते थे, किंतु ईश्वर कहता है कि वो दिन दूर नहीं जब वे अपने पूरे अस्तित्व से ईश्वरीय दंड और उसके द्वारा दिए गए वचनों को पूरा होते हुए देखेंगे। तब उन्हें पता चलेगा कि जिस चीज़ का वे इनकार और परिहास करते थे, वो एक वास्तविकता थी जो उनके सामने खड़ी है और उससे बचने का उनके पास कोई मार्ग नहीं है।
इन आयतों से हमने सीखा कि मनुष्य धीरे धीरे पदभ्रष्ट होकर पतन की ओर बढ़ता है। आरंभ में वो सत्य की अनदेखी करता है, फिर उसे मुंह मोड़ता है, फिर उसे झुटलाता है और अंततः सत्य और ईमान वालों का परिहास करता है।
कुरान मजीद की आयतें लोगों के सचेत होने और उपदेश का कारण हैं। अलबत्ता ये चीज़ सत्य को स्वीकार करने पर तैयार हृदयों के लिए है, उन लोगों के लिए नहीं जो हर धर्म और सत्य से मुंह मोड़ने की नीति अपनाते हैं।
परिहास झुटलाने से भी बुरा है। जो लोग सत्य और उसके मानने वालों का मजाक उड़ाते हैं, उनका कार्य निरुत्तर नहीं रहेगा। इस बुरे व्यवहार के कारण ईश्वर उन्हें कड़ा दंड देगा।